पाइनियम संख्या 17।
वो बात और दर्शन। दानियेल की दो भविष्यवाणी रेखाएं और प्रकाशित वाक्य की मोहर का खुलना।
18 जुलाई 2000 ईसी को 144,000 के आंदोलन की प्रथम निराशा आ पहुंची। ये दानियेल अध्याय 11 के पद 40 के गुप्त इतिहास के भीतर घटी। वो निराशा उस गुप्त इतिहास के काफी भीतर के चरण में घटी। एक ऐसा इतिहास जो 1989 में सोवियत संघ के पतन से आरंभ हुआ। पद 41 संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्रतिनिधित्व इसी अध्याय के पद 16 में भी किया गया है। वर्ष 2023 में पद 40 के गुप्त इतिहास का निर्माण करने वाले सत्यों के मुद्रा भेदन को दानियेल द्वारा अध्याय 12 में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 10 से 12 तक एक ही दर्शन का भाग है, और वो दर्शन इस प्रकार आरंभ होता है कि वो ये पहचान कराता है कि दानियेल उन बुद्धिमानों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्यवाणी के आंतरिक और बाह्य दोनों संदेशों को समझते हैं, जिन्हें वहां वस्तु और दर्शन के रूप में निरूपित किया गया है।
फारस के राजा कुरेश के राज्य के 3rd वर्ष में दानियेल पर, जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया था, एक बात प्रकट की गई, और वो बात सत्य थी, परंतु उसके लिए ठहराया गया समय दीर्घ था, और उसने उस बात को समझ लिया और उसे उस दर्शन की समझ प्राप्त हुई। दानियेल 10:1।
दो दर्शन,
थिंग और विजन, भविष्यवाणी के आंतरिक और बाह्य दर्शनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दानियेल ऐसी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है जो दोनों को समझती है, क्योंकि अध्याय 10 में थिंग और विजन दोनों ही दानियेल पर प्रकट हुए थे। उसी अध्याय में 22वें दिन पवित्र स्थान में मसीह के दर्शन दानियेल पर प्रकट हुआ। थिंग के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द अध्याय 9 में मैटर के रूप में अनुवादित है, और वहां उसे विजन के साथ संबंध में भी प्रस्तुत किया गया है।
तेरी प्रार्थनाओं के आरंभ ही में आज्ञा निकली, और मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस विषय को समझ और इस दर्शन पर विचार कर। दानियेल 9:23।
अध्याय 10 में थिंग शब्द वही शब्द है जिसे अध्याय 9 के पद 23 में मैटर के रूप में अनुवादित किया गया है। दानियेल की अंतिम विजन अध्याय 10 से 12 में अध्याय 11 का थिंग अथवा अध्याय 10 का मैटर दोनों ही द विजन से संबद्ध है। द विजन के लिए इब्रानी शब्द मारा है, और उसका अर्थ प्राकट्य है। दानियेल अपनी पुस्तक में दो विजन्स को चिन्हित करता है, तथापि उन दो विजन्स में से एक को कभी स्त्रीलिंग में और फिर पुनः पुल्लिंग में प्रस्तुत किया गया है। दानियेल अध्याय 10 के पद 1 में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो थ्राकेट्टी की विजन को और साथ ही मैटर अथवा थिंग को समझते हैं। अध्याय 8 में दानियेल दो विजन्स को चिन्हित करता है जो परस्पर संबद्ध है। अंग्रेजी में उस अध्याय में विजन शब्द 8 बार पाया जाता है, और विजन के रूप में अनुदित इब्रानी शब्दों में से एक मारा है और दूसरा छजौन। मारा का अर्थ प्राकट्य है, और छजौन का अर्थ एक स्वप्न, एक प्रकाशन या एक दैवी वाणी है। अध्याय 8 का संदर्भ ये स्थापित करता है कि जब मारा शब्द का अनुवाद विजन के रूप में किया जाता है, तब वो मसीह के प्राकट्य का द्योतक होता है। उदाहरण के लिए दानियेल 8:14 में ये मारेह अथवा रूप का दर्शन है, जिसका अर्थ ये है कि 22 अक्टूबर 1844 को मसीह मलाकी अध्याय 3 के वाचा के दूत की पूर्ति में मंदिर में अकस्मात प्रकट होंगे, जिसे बहन वाइट ने 22 अक्टूबर 1844 को पूरा हुआ कहा। जब बहन वाइट ये निरूपित करती हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 का वो स्वर्गदूत जो उतरा और एक पांव भूमि पर तथा एक पांव समुद्र पर रखा, स्वयं यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं था, तब वे भविष्यवाणी में उस मार्ग चिन्ह की पहचान कर रही हैं, तब मसीह प्रकट होते हैं। ये उनके अनेक प्रकटनों में से एक है। यहूदा के अनुसार वे मूसा के पुनरुत्थान के समय प्रकट हुए, वहां वे महादूत मीकाएल के रूप में प्रकट हुए, तथापि वो एक भविष्य सूचक प्रकटन ही था। अध्याय 8 में मारेह के दर्शन का अनुवाद भी उसके अर्थ के अनुरूप के रूप में किया गया है।
और ऐसा हुआ कि जब मैं अर्थात मैं दानियल दर्शन देख चुका था और उसके अर्थ की खोज कर रहा था, तब देखो मेरे सामने मनुष्य के रूप के समान कोई खड़ा था। दानियल 8:15।
यहाँ का संदर्भ ये दर्शाता है कि मनुष्य के समान रूप वाला दूत गब्रियल था, और रूप शब्द मारेहे दर्शन में मसीह के रूप दर्शन को सूचित करता है, क्योंकि जिस प्रकार मसीह का प्रतिनिधित्व महादूत मिकाएल द्वारा तथा प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 के पराक्रमी स्वर्गदूत द्वारा किया गया है, उसी प्रकार भविष्यवाणी संबंधी प्रतीकवाद में मसीह को स्वर्गदूतों के और यहां तक कि मनुष्यों के प्रतीकों के साथ अदल बदल कर निरूपित किया जाता है, चाहे उस पद में गब्रियल हो या प्रकाशित वाक्य 10 में मसीह या महादूत मीकाएल के रूप में। इनमें से प्रत्येक एक संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, और इसी कारण बहन व्हाइट प्रकाशित वाक्य के स्वर्गदूतों की तुलना उन संदेशों से भी करती हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन लोगों से भी जो स्वर्गदूतों द्वारा प्रतीकित उस संदेश का प्रचार करते हैं। ये सत्य इतना महत्वपूर्ण है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 की पहली 3 आयतों में वही 3 आयतें जो यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर के खुलने की घोषणा करती हैं, अनुग्रह काल के बंद होने से ठीक पूर्व, क्योंकि समय निकट है, परमेश्वर से मनुष्य तक के संचार क्रम को विशिष्ट रूप से इस प्रकार पहचाना गया है, एक संदेश जो पिता से निकलकर पुत्र को दिया गया, फिर पुत्र ने वो संदेश एक स्वर्गदूत को दिया, वो स्वर्गदूत उसे एक मनुष्य के पास ले गया, और वो मनुष्य आगे उसे कलीसियाओं को भेजता है। इस संचार क्रम का प्रत्येक सोपान पवित्र और पावन है, और वही पवित्रकृत पवित्रता उन भविष्य सूचक मार्ग चिह्नों पर प्रतिनिधित्वित होती है जहां मसीह स्वयं के रूप में अथवा किसी स्वर्गदूत, मनुष्य या संदेश के माध्यम से प्रकट होते हैं, जब वो किसी मार्ग चिन्ह पर स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध करते हैं, तो वो मारेहे रूप दर्शन होता है।
यीशु मसीह का प्रकाश इतवाक्य जो परमेश्वर ने उसे दिया ताकि वो अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं, और उसने इसे अपने स्वर्गदूत के द्वारा अपने दास यूहन्ना के पास भेजकर संकेतों के द्वारा प्रकट किया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा उन सब की साक्षी दी। धन्य है वो जो पढ़ता है और वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। और उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को मुहर बंद न कर, क्योंकि समय निकट है। जो अधर्मी है वो अब भी अधर्मी बना रहे, और जो अशुद्ध है वो अब भी अशुद्ध बना रहे, और जो धर्मी है वो अब भी धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो अब भी पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 1:3-10:11।
8वें अध्याय में छेजान वो दूसरा इब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद दर्शन के रूप में किया गया है। रूप के संदर्भ में मारा दर्शन एक पथ चिन्ह की पहचान करता है, और छेजान दर्शन एक भविष्यवाणी काल की पहचान करता है। 8वें अध्याय में दर्शन के रूप में अनुदित इन दो शब्दों में दैवीय सममिति है, इस अर्थ में कि इब्रानी शब्द मारे का प्रयोग दानियल इसके स्त्रीलिंग रूप मारा में भी करता है। छेजान के संदर्भ में दानियल इसे दो प्रकार से निरूपित करता है, परंतु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की विपरीतता के द्वारा नहीं, बल्कि दो ऐसे शब्दों से जो वही अर्थ निरूपित करते हैं, और ऐसा करते हुए वे गुणोत्तर रूप से विस्तार करते हैं। छेजान का अर्थ दर्शन, दैवी उक्ति या भविष्यवाणी है, और जो शब्द अंग्रेजी में मैटर या थिंग के रूप में अनुदित किया जाता है वो इब्रानी शब्द दबर है जिसका अर्थ वचन है। जब ये समझा जाता है कि छेजान का दर्शन दानियल द्वारा दबर शब्द से भी अभिव्यक्त किया गया है, तब ये दोनों मिलकर परमेश्वर के वचन के भविष्य सूचक संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियल सदैव दबर या छेजान को मारेह के विपरीत रखता है। जब भविष्य सूचक स्तर पर विचार किया जाता है तो दबर और छेजान द्वारा निरूपित परमेश्वर के वचन के भविष्य सूचक संदेश जब मसीह के प्रकट होने के मारेह दर्शन के साथ संयुक्त किए जाते हैं, तब परमेश्वर के वचन के भविष्य सूचक इतिहास के पवित्र मार्ग चिन्ह प्राप्त होते हैं। फिर यदि आप मारेह शब्द के स्त्रीलिंग रूप मारेह को दानियल में दर्शन के अर्थ श्रेणी में जोड़ दें तो आपके पास विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का दर्पणवत दर्शन होता है। दानियल के अंतिम दर्शन में, जो उसकी पुस्तक के अंतिम तीन अध्यायों द्वारा निरूपित है, दानियल अंतिम दिनों में एक ऐसी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के वचन के भविष्यवाणीपूर्ण दर्शनों को और उन पवित्र मार्ग चिह्नों की पवित्रता को समझती है जो 144,000 के सुधारात्मक आंदोलन का गठन करते हैं, क्योंकि वे वही है जो उसके पवित्र भविष्यवाणीपूर्ण वचन में जहां कहीं मेमना जाता है उसका अनुसरण करते हैं। मेमने का अनुसरण करते हुए वह उन्हें दानियल 10 दीजपूंसा के दर्पणवत दर्शन तक ले जाता है, जहां वे या तो भ्रम के अधीन छिपने के लिए भागते हैं, जहां वे अनंत काल के लिए दफन कर दिए जाते हैं, या वे धूल में दीन किए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं और अंतिम दिनों का भविष्यवाणीपूर्ण संदेश देने के लिए उन्हें सामर्थ्य प्रदान किया जाता है।
गब्रियल दानियल को विषय और दर्शन दोनों को समझने की आज्ञा देता है। समझना के रूप में अनुदित इब्रानी शब्द का अर्थ बुद्धि में भेद करना है। दानियल, जो हे प्रिय पाठक हम दोनों का प्रतिनिधित्व है, करता है को विषय और दर्शन के बीच के अंतर और विभेद को समझने की आज्ञा दी गई थी। चैसोन दर्शन भविष्यवाणी के इतिहास की बाह्य रेखा का प्रतिनिधित्व करता है और मारेह दर्शन मसीह के प्राकट्य का प्रतिनिधित्व करता है। विषय और वस्तु दोनों का मूल इब्रानी दबार है, जिसका अर्थ वचन है। यीशु दबार है क्योंकि वे ही वचन हैं। वस्तु और विषय दोनों ही दबार होते हुए प्राकट्य के दर्शन के साथ संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं।
दबार, जो विषय और वस्तु है, वो अध्याय 8 का छाजोन दर्शन भी है और वो भविष्यवाणी इतिहास के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। इन निरूपणों छाजोन, दबार, विषय और वस्तु में से प्रत्येक भविष्यवाणी की बाह्य रेखा को निर्दिष्ट करता है और मरह तथा उसका स्त्रीलिंगी रूप मराह भविष्यवाणी की आंतरिक रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। परमेश्वर के अंतकालीन लोग, जिनका निरूपण दानियल 10 के पद 1 में किया गया है, भविष्यवाणी इतिहास की आंतरिक और बाह्य दोनों रेखाओं को समझते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आंतरिक रेखा का निरूपण 7 कलीसियाओं द्वारा और बाह्य रेखा का निरूपण 7 मोहरों द्वारा किया गया है।
21 दिन के उपवास के बाद जब दानियल ने मसीह का दर्शन देखा, तब उसने मरेह दर्शन का स्त्रीलिंग रूप देखा। मरेह का अर्थ प्रकट रूप है और जब दानियल ने मसीह को देखा तब उसने मराह दर्शन देखा। और यद्यपि मरेह का अर्थ प्रकट रूप है, उसी शब्द के स्त्रीलिंग रूप का अर्थ दर्पण होता है। बहन व्हाइट हमें बताती हैं कि दानियल ने जो दर्शन देखा वही दर्शन यूहन्ना ने भी देखा, और यूहन्ना ने वो दर्शन तब देखा जब मसीह स्वर्गीय पवित्र स्थान में थे।
गैब्रियल के आगमन के समय नबी दानियल आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था, परंतु कुछ वर्षों बाद उन विषयों के बारे में जो अभी तक पूरी तरह समझाए नहीं गए थे अधिक जानने की इच्छा से उसने फिर से परमेश्वर से प्रकाश और बुद्धि मांगने का निश्चय किया। उन दिनों मैं दानियल 3 पूरे सप्ताह शोक करता रहा। मैंने कोई स्वादिष्ट रोटी नहीं खाई, ना मांस और ना ही दाखरस मेरे मुंह में गई, और मैंने तन पर बिल्कुल तेल भी नहीं लगाया। तब मैंने अपनी आँखें उठाई और देखा, और क्या देखता हूँ, सन के वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी कमर उफाज के उत्तम सोने से कसी हुई थी। उसका शरीर भी बेरिल के समान था, उसका मुख बिजली की चमक के समान और उसकी आंखें आग के दीपकों के समान, और उसकी भुजाएं और उसके पांव रंग में चमकाए हुए पीतल के समान थे, और उसके वचनों की आवाज़ बहुतों की आवाज़ के समान थी।
स्वयं परमेश्वर का पुत्र ही दानियल के सामने प्रकट हुआ। ये वर्णन वैसा ही है जैसा यूहन्ना ने दिया था जब पटमोस के द्वीप पर मसीह से प्रकट हुए थे। अब हमारे प्रभु एक अन्य स्वर्गदूत के साथ आते हैं ताकि दानियल को सिखाएं कि अंतिम दिनों में क्या घटित होगा। ये ज्ञान दानियल को दिया गया और प्रेरणा से हमारे लिए लिपिबद्ध किया गया, हम जिन पर संसार का अंत आ पहुंचा है। जगत के उद्धारकर्ता द्वारा प्रकट किए गए महान सत्य उन लोगों के लिए हैं जो सत्य की खोज
छिपे हुए खजानों की खोज के समान करते हैं। दानियल एक वयोवृद्ध पुरुष था। उसका जीवन एक मूर्ति पूजक राजदरबार के आकर्षणों के बीच बीता था। उसका मन एक महान साम्राज्य के राज्य कार्यों से बोझिल था। तथापि वो इन सब से अलग होकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी आत्मा को दीन करता है और परम प्रधान के अभिप्रायों के ज्ञान की खोज करता है और उसकी विनतियों के प्रत्युत्तर में स्वर्गीय दरबारों से उन लोगों के लिए प्रकाश प्रेषित किया गया जो उत्तर काल में जीवित रहेंगे। तो फिर हमें कितनी गंभीरता से परमेश्वर की खोज करनी चाहिए ताकि वो हमारी समझ को खोल दे और हम स्वर्ग से हमारे पास लाए गए सत्यों को समझ सकें। रिव्यू एंड हेराल्ड, 8 फरवरी 1881।
144,000।
दानियल विषय और दर्शन को समझता है और उसकी पहचान दानियल के साथ साथ बेलतशस्सर के रूप में भी की गई है। भविष्यवाणी में नाम का परिवर्तन एक वाचा संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, अथा दानियल अंतिम वाचाजन का प्रतिनिधित्व करता है जो 144,000 हैं, जिन्हें मंदिर में मसीह के दर्शन द्वारा परखा जाता है। वो परीक्षा उपासकों की दो श्रेणियों का पृथक्करण कराती है।
और मैं दानियल नकेला उस दर्शन को देखता रहा, क्योंकि जो पुरुष मेरे साथ थे उन्होंने उस दर्शन को नहीं देखा, परंतु उन पर बड़ी थरथराहट आ पड़ी, अतएव वे अपने आप को छिपाने के लिए भाग गए। दानियल 10:7।
दानियल प्रत्यक्षतः परमेश्वर की अंतकालीन प्रजा से संबंधित दूसरी तथा मंदिर परीक्षा को चिन्हित कर रहा है, एक ऐसी परीक्षा जिसका आधार स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह का दर्शन है। पद 7 का दर्शन मारेह दर्शन का स्त्रीलिंग रूप है जो मारा दर्शन के रूप में निरूपित है। यदि आप मंदिर में मसीह के दर्शन के प्रति, जैसा कि दानियल की प्रतिक्रिया द्वारा निरूपित है, उसी प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं, तो भविष्यवाणी की वस्तु और भविष्यवाणी का दर्शन आपको प्रकट किए जाएंगे। यदि आप उसी मसीह के मंदिर दर्शन का सामना करते हैं तो आप अनंत अंधकार की चले जाते हैं। मंदिर की परीक्षा, जो अनंत सुसमाचार के 3 चरणों में दूसरी परीक्षा है, उससे पूर्व प्रथम और आधारभूत परीक्षा आती है। नीवो की परीक्षा का प्रश्न दानियल 11:14 पद में निरूपित है, जहां रोम का चित्रण 13 लोगों के डाकू के रूप में किया गया है जो दर्शन को स्थापित करता है।
समय निकट है।
18 जुलाई 2020 की निराशा के 3.5 दिन बाद 31 दिसंबर 2023 को यीशु मसीह के प्रकाशन की मुहरें खुलनी प्रारंभ हुईं, क्योंकि समय निकट था।
धन्य है वो जो पढ़ता है और वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं और उसमें लिखी बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। और उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मुहरबंद न कर, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:3-22:10।
यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर के खुलने को चिन्हित करने वाले समय का उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आरंभ में किया गया है और पुस्तक के अंत में वही उद्घोषणा अल्फा वक्तव्य में ओमेगा वक्तव्य जोड़ती है। अनुग्रह का समय समाप्त होने से ठीक पहले यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अमोहरित किया जाता है। 21 दिनों के उपवास के पश्चात 22वें दिन वो वस्तु, जो विषय भी है, जो दबर डाबर अर्थात वचन भी है, जो बाह्य भविष्यवाणीगत इतिहास का हजून छाजोन दर्शन भी है, दानियल को प्रकट किया गया, जब उसने परम पवित्र स्थान में स्वर्गीय महायाजक का दर्पणवत मारा दर्शन अनुभव किया। दानियल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें दर्पणवत दर्शन का अनुभव है और जो मसीह के भविष्यवाणीगत प्राकट्यों को तथा छासूम दर्शन द्वारा निरूपित बाह्य इतिहास को भी समझते हैं। मारा दर्शन मसीह को वसमयिक भविष्यवाणीगत मार्ग चिन्ह के रूप में निरूपित करता है और उसी शब्द का स्त्रीलिंग उस अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन करने से उत्पन्न होता है। जैसा कि दानियल, यूहन्ना, यशाया, सिस्टर व्हाइट और अन्य भविष्यद वक्ताओं द्वारा निरूपित है। इस स्तर पर चाजोन बाह्य से आधारण बाजुकन परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्यवाणी के घटनाक्रम में मसीह की प्रकटियों का मरेह दर्शन मंदिर परीक्षण है। क्या आपके अपने पवित्रतम स्थान के भीतर के पवित्रतम स्थान में मसीह प्रकट हुआ है? वहीं दैवित्व मनुष्यता से संयुक्त होता है। ये वो परीक्षण है जिसे लिटमस कसौटी पर अनुग्रह काल के समाप्त होने से पहले उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। चरित्र को प्रकट करने वाली लिटमस कसौटी मरेह दर्पण दर्शन है। 3 दिसंबर 2023 को पद 14 के तेरी प्रजा के लुटेरे के विषय में नींव की बाह्य परीक्षा आरंभ हुई, और जब वर्तमान पोप का 8 मई 2025 को पदग्रहण हुआ तब पद 14 का दर्शन स्थापित हुआ। नींव की परीक्षा मंदिर की परीक्षा में स्थानांतरित हो गई। 9 मई 2025 से मंदिर की परीक्षा चल रही है। 31 दिसंबर 2023 को दो साक्षियों का पुनरुत्थान प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के पद 11 में निरूपित था, और जो पुनरुत्थान उस तिथि को आरंभ हुआ वो 2014 में आरंभ होकर 2022 में तीव्र होने वाले यूक्रेन युद्ध की अवधि के भीतर घटित हुआ। उस इतिहास में भविष्यवाणी की बाह्य और आंतरिक रेखाएं एक साथ आ मिली। 31 दिसंबर 2023 को नींव रखने का कार्य चल रहा था, जो कार्य 70,098 से 1840 तक के इतिहास, 1840 से 1840 तक के इतिहास और 19 अप्रैल 1840 से 22 अक्टूबर 1840 तक के इतिहास द्वारा प्रतिरूपित है। दानियल अध्याय अग्रावाय पद अग्रावाय इतिहास में भविष्यवाणी की बाह्य रेखा के रूप में उपस्थित हुआ और उसी इतिहास से संबद्ध हो गया जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की आंतरिक रेखा है। सन 2014 में यूक्रेनी युद्ध आरंभ हुआ, जिसका प्रतिरूप 910 ईसा पूर्व राफिया के युद्ध में दृष्ट होता है। सन 2015 में दानियल 11 के पद 2 का चौथा समृद्ध राजा उठ खड़ा हुआ और राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी बनने का अपना अभिप्राय घोषित किया। उस घोषणा ने ग्रेशिया के राज्य के रूप में निरूपित अजगर मनस्क वैश्विकतावादियों को क्रुद्ध कर दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 11 ने 31 दिसंबर 2030 को उस समय के रूप में चिन्हित किया जब वे दो साक्षी पुनरुत्थित हुए। 18 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2030 तक की अवधि को तब एक भविष्यवाणी संबंधी मरुस्थल समझा गया। मरुस्थल की अवधि के अंत में जुलाई 2030 में एक वाणी पुकार उठी, और फिर नैशविल की 18 जुलाई 2020 की असफल भविष्यवाणी के ठीक 1260 दिन बाद यहूदा के गोत्र का सिंह ने अपने भविष्यवाणी वचन की मुहरें खोलना प्रारंभ किया। परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन की मुहरों का खुलना सदैव एक त्रिचरणीय परीक्षण प्रक्रिया उत्पन्न करता है, जैसा कि दानियल अध्याय 3 में प्रतिपादित है।
बहुत से लोग शुद्ध किए जाएंगे और निर्मल बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई भी न समझेगा परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियल 12:10।
प्रकाशित वाक्य नवम में दुल्हन अपने आप को तैयार करती है और तब उसे श्वेत वस्त्र दिया जाता है। ये श्वेत वस्त्र इस बात का द्योतक है कि दुल्हन तैयार है, और ये प्रकाशित वाक्य 19 में तब होता है जब आकाश के झरोखे खुलते हैं। मसीह की धार्मिकता के वस्त्र से दुल्हन को श्वेत बनाए जाने से पूर्व उसका शुद्धिकरण किया जाता है।
31 दिसंबर 2023 को नींवों की परीक्षा आरंभ हुई, ताकि जो शुद्ध होने वाले थे वे शुद्ध किए जाएं। वो शुद्धिकरण ज्ञान की वृद्धि के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह ने तब अपने विषय में अंतिम प्रकाशन की मुहर खोलना आरंभ किया। उस प्रकाशन में ये सम्मिलित है कि वही वो एकमात्र नींव है जिसे डाला जा सकता है। उस मूलभूत सत्य को अस्वीकार करना जो ये पहचान कराता है कि रोम तेरे लोगों के लुटेरे हैं, उसी एकमात्र नींव को अस्वीकार करना है जिसे डाला जा सकता है।
10 दिसंबर 2023 को एक परीक्षण प्रक्रिया का आरंभ हुआ, जिसने तुरंत ही दो वर्गों का पृथक्करण उत्पन्न किया। यहूदा के गोत्र का सिंह ने अब मुहर खोलकर ये प्रकट किया है कि 14वें पद की ऐतिहासिक पूर्ति 8 मई 2025 को घटित हुई, और ऐसा करते हुए उसने मिलर द्वारा रोम की उस पहचान की पुष्टि की कि वो प्रतीक है जो भविष्यद्वाणी के बाह्य दर्शन की स्थापना करता है। 2024 में जब ट्रंप लौटे तब उन्होंने दानियेल अध्याय 11 के 13वें पद की पूर्ति की। फिर अगले पद में पोप लियो के निर्वाचन के साथ हम 2025 को चिह्नित करते हैं। ट्रंप और उनके विरोधी मसीह समकक्ष दोनों का पद ग्रहण 2025 में हुआ।
इस आंदोलन में जिन तिथियों को हम चिन्हित करते हैं वे मूलतः पवित्रीकृत पश्चित दृष्टि है। हम अंत का समय को 1949 के रूप में चिन्हित करते हैं। फिर 1996 में संदेश का औपचारिकी चिन्हता हुआ। 1911 के समय उस औपचारिकीकृत संदेश को सामर्थ्य प्रदान किया गया। 2012 में और जनवरी 2013 में समाप्त हुए हबक्कूक की पट्टिकाओं के प्रस्तुतीकरण में आधारशिलाएं रखी गईं। 18 जुलाई 2021 को प्रथम निराशा आ पहुंची। तत्पश्चात जुलाई 23 में मरुभूमि में एक वाणी पुकारने लगी और 31 दिसंबर 2023 को यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का मुद्रा भंग आरंभ हुआ और प्रथम बाह्य आधारभूत परीक्षण आरंभ हुआ।
8 मई 2025 को द्वितीय आंतरिक मंदिर परीक्षा आरंभ हुई। तृतीय लिटमस परीक्षण अब निकट ही है। वहां यह प्रकट होगा कि आत्मा के पास वो तेल है या नहीं जो पहली अर्थात बाह्य परीक्षा द्वारा निरूपित संदेश का है, और साथ ही दूसरी आंतरिक परीक्षा से संबद्ध तेल भी है या नहीं। ये परीक्षण बाह्य के बाद आंतरिक और उसके बाद अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है।
भविष्यवाणी की आंतरिक रेखा उन्हीं पूर्ववर्ती मार्ग चिह्नों से बनी है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। उन प्रत्येक मार्ग चिह्नों का मिलेराइट इतिहास के समान मार्ग चिह्नों के साथ संरेखण होता है। अंत के समय के रूप में 1792-1979 जो भी अंत का समय है से मेल खाता है। वहां यहूदा के गोत्र के सिंह ने अपने वचन की मुहर खोली, क्योंकि वही वचन है जब एडवेंटिज्म ने यारोबाम के आधारभूत विद्रोह के प्रसंग में बेतायल के झूठे भविष्यद्वक्ता के पास लौटकर उसके साथ भोजन करके उस अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता की भूमिका पूरी की। तब वे पतित प्रोटेस्टेंटवाद के उन तर्कों पर लौट आए जो विलियम मिलर द्वारा सात समय की पहचान के विरुद्ध प्रयुक्त किए गए थे। इसी कारण वे यदि कुछ भी समझते हों तो भी ये बात पूर्णतता नहीं समझते कि 1863 प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के अल्फा आंदोलन का अंतिम मार्ग चिन्ह क्यों है।
इसी कारण उनके लिए ये तथ्य कोई महत्व नहीं रखता कि ये अवधि 62-58 वर्षों की है जो 1300 सच का एक प्रतीक है, और एरसारे 63 से लेकर 1982 ने अंत के समय तक के इतिहास को व्यापने वाले अरण्य का प्रतीक है। 40 वर्षों के अंत में यहोशू ने उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उसे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कराया। 1982 ने प्रभु ने अपने उमेगा आंदोलन को 1662 से 1982 तक के अरण्य से बाहर निकालने के कार्य का आरंभ किया, जैसे उसने 538 से अथर्वंत से पटनार्द तक के अरण्य से अल्फा आंदोलन को बाहर निकाला था।
1985 में दानियेल की पुस्तक के अंतिम तीन अध्यायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हिड्डकेल नदी के दर्शन की मुहर खोली गई, ठीक वैसे ही जैसे दानियेल के अध्याय 7, 8 और 9 का प्रतिनिधित्व करने वाले उलाई नदी के दर्शन की मुहर 1700 में खोली गई थी। किंग जेम्स बाइबल के प्रकाशन के 220 वर्ष बाद विलियम मिलर ने उलाई के दर्शन पर आधारित अपना संदेश पहली बार प्रकाशित किया और इस प्रकार 1831 में अपने संदेश को औपचारिक रूप दिया। उसी प्रकार हिड्डकेल का संदेश 1996 में पहली बार प्रकाशित हुआ। 1796 का 220 वर्ष बाद, वह वर्ष जो संयुक्त राज्य अमेरिका की गौरवशाली भूमि का जन्मस्थल है, किंग जेम्स संस्करण के 220 वर्ष बाद संदेश के मिलर प्रदत्त औपचारिक प्रतिपादन ने विलियम मिलर की पहचान इस रूप में की कि वे बाइबल की भविष्यवाणियों, पुराने और नए नियम दोनों की का उपयोग करके जागृति और सुधार लाने वाले सर्वप्रथम पवित्र संदेशवाहक थे। बाइबल दिव्य है और उसने 220 वर्ष पश्चात मानव के साथ संयुक्त होकर उलाई का संदेश उत्पन्न किया। यीशु अल्फा और ओमेगा है और वे परमेश्वर का वचन है। अतः बाइबल के किंग जेम्स संस्करण का 1611 में प्रकाशन यीशु को सन 1757 में और साथ ही सन 31 में भी स्थापित करता है। अंत के समय मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह बनकर प्रकट होते हैं, और जब संदेश औपचारिक किया जाता है तब वे अल्फा और ओमेगा तथा वचन हैं।
प्रारंभ के साथ मिलर का संबंध इस रूप में पहचाना जाता है कि प्रारंभ और अंत दोनों संदेश के प्रकाशन पर बल देते हैं। 1736 से नौकंदी शानवे तक का काल भी यद्यपि भिन्न वही विशेषताएं वहन करता है। हिद्देकेल का संदेश दानियल 11 के 41वें पद ने प्रतिपादित के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून का ही संदेश है। 1776 तथा स्वतंत्रता की उद्घोषणा के प्रकाशन ने उस 220 वर्षीय अवधि का आरंभ बिंदु निरूपित किया जिसका समापन टाइम ऑफ द एंड शीर्षक वाले एक प्रकाशन के साथ हुआ, जिसे जानबूझकर नहीं वरन दैवी व्यवस्था से ये शीर्षक मिला। उसी वर्ष 1990 में फ्यूचर फॉर अमेरिका नामक एक सेवा निगम हमें प्रदान किया गया। मनोरम देश अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का संदेश भविष्यवाणी के आरंभ और समापन के बीच प्रत्यक्ष संबंध के साथ औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। मिलेराइट इतिहास के प्रत्येक प्रमुख मील के पत्थर की पुनरावृत्ति 10 कुमारियों के दृष्टांत की मार्गदर्शक प्रतिरूप के अधीन हुई है। दोनों 220 वर्षीय अवधियों के आरंभ और समापन किसी प्रकाशन द्वारा चिह्नित है। मिलर के संदेश और पद्धति की पुष्टि हुई और उन्हें सामर्थ दूसरी हाय से संबद्ध इस्लाम में हुई एक पूर्ति के द्वारा प्रदान किया गया। संदेश को सामर्थ देने के लिए प्रभु ने जिस साधन का प्रयोग किया वो था मिलर का एक दिन एक वर्ष सिद्धांत और 9 अक्टूबर पर संदेश और पद्धति को सामर्थ देने वाला सिद्धांत उस घटना से संबद्ध था जब प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत उतरा और उसने 11 अगस्त 1840 को किया गया अपना अवतरण, जिसका निरूपण प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में है, पुनः दोहराया। वे दोनों स्वर्गदूत स्वर्गदूत के रूप में मसीह के भविष्य सूचक आविर्भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सिद्धांत 9 अक्टूबर के आंदोलन के लिए उतना ही बुनियादी है जितना अनुपूर्वक टपलांत सिद्धांत के लिए एक दिन एक वर्ष का सिद्धांत था। वो ये है कि मिलराइट इतिहास 144,000 के इतिहास में पुनरावृत्त होता है। जब तीसरी हाइड से संबंधित इस्लाम की एक भविष्यवाणी की पूर्ति ओमेगा और तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में आ पहुंची और वो उन पूर्तियों के साथ सामंजस्य में थी जो पहली और दूसरी हाइड से संबंधित इस्लाम की भविष्यवाणियों की पूर्तियां होकर अल्फा प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के इतिहास में आ पहुंची थीं, तब ये सिद्धांत कि मिलराइट इतिहास 144,000 के इतिहास में दोहराया जाता है उतनी ही सुदृढ़ता से पुष्ट हुआ जितनी सुदृढ़ता से प्रकाशित वाक्य 9 की पहली और दूसरी हाइट के संबंध में मिलर का एक दिन एक वर्ष का सिद्धांत पुष्ट हुआ था। प्रकाशित वाक्य 9:15 में प्रतिपादित 391 वर्ष और 15 दिनों की समय भविष्यवाणी से परिचित कुछ लोग मेरी पूर्ववर्ती बात को शायद चूक जाएं। मैं स्पष्ट करता हूं, पहली और दूसरी हाया पहले और दूसरे स्वर्गदूत के इतिहास के अनुरूप है और तीसरी हाया का इतिहास तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास के अनुरूप है। यहां तात्पर्य ये है कि दूसरी हाया के इतिहास में निर्धारित 3 हरबपने वर्ष और 15 दिनों की अवधि का आरंभ बिंदु पहली हाया के इतिहास में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय की पहली हाया के इतिहास में 1500 वर्ष की एक भविष्यवाणी है और जिस दिन वो भविष्यवाणी काल समाप्त होता है उसी दिन 3 हरबपने वर्ष और 15 दिनों की भविष्यवाणी आरंभ होती है। ये दोनों भविष्यवाणियां पहली और दूसरी हाया को प्रत्यक्षतः जोड़ती हैं। अतः जब दिन वर्ष सिद्धांत पर आधारित इस्लाम के विषय में एक भविष्यवाणी की गई तो वो भविष्यवाणी इस्लाम की पहली और दूसरी हाया की ही भविष्यवाणी थी, जो पहले और दूसरे स्वर्गदूत के इतिहास में मिलर की पद्धति और संदेश की पुष्टि करने वाला संदेश था। जब वो इतिहास 22 अक्टूबर 1845 को समाप्त हुआ तब 7वीं तुरही ध्वनित होने लगी और 7वीं तुरही ही एक साथ तीसरा हाय भी है तथा भक्ति का भेद भी, अर्थात तुम में मसीह है जो महिमा की आशा है। वो तुरही एक बाह्य चेतावनी संदेश है और एक आंतरिक चेतावनी संदेश भी है। इसी कारण 2522 वर्ष की भविष्यवाणी भूमि के लिए 7वें वर्ष के विश्राम से संबद्ध है, जिसमें योबेल भी शामिल है। 22 अक्टूबर 1845 को 7वीं तुरही 2522 वर्ष और 2300 वर्ष की भविष्यवाणियों की पूर्ति में ध्वनित होने लगी।
परंतु सातवें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में जब वो तुरही फूंकना आरंभ करेगा तब परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा जैसा कि उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया था। प्रकाशित वाक्य 10:7।
30 अक्टूबर 1844 प्रैक प्रायश्चित का दिन था और प्रायश्चित के दिन जुबली की तुरही फूंकी जानी थी। तब से हम तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में और साथ ही तीसरे हाय जो कि सातवीं फूंकी है के इतिहास में जी रहे हैं। 11 अगस्त 1840 को प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का शक्तिशाली स्वर्गदूत अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करने के लिए उतरा, जैसा कि 9:11 को प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्गदूत ने किया।
2012 से लेकर 2013 के जनवरी तक हबकूक की पट्टिकाएं शीर्षक वाली श्रृंखला निर्मित की गई और वो मई 1842 में 1833 के अग्रणी चार्ट के प्रकाशन के साथ संरेखित थी। तब आंदोलन की नींवें रखी गईं, चाहे वो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों का अल्फा आंदोलन हो या तृतीय स्वर्गदूत का आंदोलन। हबकूक की दो पट्टिकाएं उस इतिहास और संदेश में बुनी गईं। 18 जुलाई 2020 की असफल भविष्यवाणी 19 अप्रैल 1844 के समानांतर थी और दृष्टांत में विलंब का समय आरंभ हो गया था।
1260 अपने मंदिर को उस अपवित्रीकरण से दो बार शुद्ध किया। उन्होंने ये अपनी सेवकाई के आरंभ में और उसके समापन पर किया और इस प्रकार उन दोनों शुद्धियों को एक अल्फा और एक ओमेगा शुद्धिकरण बना दिया।
सिस्टर व्हाइट स्पष्ट रूप से पहली मंदिर शुद्धि को 9:11 और पहली वाणी के साथ संबद्ध करती है, जिसकी वो पहचान प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के पहले तीन पदों के रूप में करती हैं। इसके बाद वो पद 4 की अन्य वाणी को दूसरी मंदिर शुद्धि तथा रविवार के कानून के रूप में चिन्हित करती हैं। मिलर राइटों के लिए 19 अप्रैल 1844 पहली मंदिर शुद्धि थी और 22 अक्टूबर 1844 दूसरी। 1790 से 1844 तक के 46 वर्षों में मिलराइट मंदिर का निर्माण हुआ और मिलराइट मंदिर निर्माण का एक फ्रैक्टल उन दो निराशाओं के इतिहास में मिलता है जो दोनों ही मंदिर शुद्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो इतिहास मंदिर के विषय में है।
18 जुलाई 2000 से तकर वैक्सीन पॉइंट ठीक तक विलंब काल में कुवारी कन्याएं सोई रही। जब वे जागेंगी तो वे नींव रखने और मंदिर को उठाने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होंगी। तब से मसीह यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में भविष्यवाणी के प्रकाश को अनुमुद्रित कर रहे हैं और अनुमुद्रित किया गया ये भविष्यवाणी संबंधी प्रकाश सदा एक त्रिचरणीय परीक्षात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करता है जो लिटमस परीक्षण पर समाप्त होती है, जहां चरित्र प्रकट तो होता है परंतु कभी विकसित नहीं होता। लिटमस परीक्षण पर विश्वासी कुवारी कन्याओं को पवित्र आत्मा का ऐसा उंडेला जाना प्राप्त होगा जो परमेश्वर के लोगों के मध्य परमेश्वर की सामर्थ्य के अब तक अभिलेखित हर प्रकटन से बढ़कर होगा। ऐसी ज्योति वृद्धि होगी जिसका अब तक कभी दर्शन नहीं हुआ। ये कहते हुए मैं एक अन्य ऐतिहासिक रेखा प्रस्तुत करूंगा जो मिलर राइट इतिहास और 1,44,000 के इतिहास के बीच विद्यमान समांतरता का समर्थन करती है।
परंतु तू हे दानियल, इन वचनों को बंद कर दे और इस पुस्तक पर अंतकाल तक मुहर लगा दे। बहुत से लोग इधर उधर फिरेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। और उसने कहा, हे दानियल, अपने मार्ग पर चला जा, क्योंकि ये वचन अंतकाल तक बंद और मुहर बंद रखे गए हैं। बहुत से लोग शुद्ध किए जाएंगे, उजले बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट दुष्टता ही करेंगे और दुष्टों में से कोई न समझेगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियल 12:4-9-10।
हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।
अद्वितीयता।
इस वर्ष फरवरी 2026 को एलन मस्क ने ये दावा किया कि अब हम सिंगुलैरिटी में हैं।
प्रौद्योगिक सिंगुलैरिटी।
प्रौद्योगिक सिंगुलैरिटी अक्सर केवल सिंगुलैरिटी कहलाती है। भविष्य का एक काल्पनिक काल बिंदु है जब प्रौद्योगिक प्रगति, मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा प्रेरित, इतनी तीव्र और शक्तिशाली हो जाती है कि वो मानवीय नियंत्रण और बोध से परे गति पकड़ लेती है
और मानव सभ्यता में अप्रत्याशित तथा गहन रूपांतरणों का कारण बनती है। मूल अवधारणा बुद्धि विस्फोट की है। जैसे ही हम ऐसा AI तंत्र निर्मित करते हैं जो सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान हो, जिसे प्रायः कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI कहा जाता है, वो तंत्र स्वयं का पुनर्रचना और उन्नयन ऐसी तीव्रता से कर सकता है जो किसी भी मानवीय दल द्वारा कभी संभव न थी। ये एक आवर्ती आत्म सुधार चक्र उत्पन्न करता है जिसमें क्षमता अत्यल्प काल में बार बार दोगुनी होती जाती है, दिनों से, घंटों से, मिनटों तक, जिससे आगे का विकास विस्फोटक हो उठता है और सिंगुलैरिटी पूर्व मनुष्यों के लिए उसका सार्थक रूप से पूर्वानुमान लगाना या उसे दिशा देना असंभव हो जाता है। सिंगुलैरिटी शब्द भौतिकी और गणित से उधार लिया गया है, जहां सिर्व कृष्ण विवर में सिंगुलैरिटी वो बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिकी के हमारे वर्तमान नियम विफल पड़ जाते हैं। हम घटना क्षितिज के पार क्या होता है न देख सकते हैं और न उसका पूर्वानुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रौद्योगिकीय विलक्षणता को इतिहास में एक घटना क्षितिज के रूप में देखा जाता है। हम उस बिंदु तक प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान कर सकते हैं, परंतु उसके परे भविष्य असंवर्धित मानव मस्तिष्कों के लिए अपारदर्शी हो जाता है।
संक्षिप्त इतिहास तथा प्रमुख चिंतक।
1950 का दशक प्रारंभिक बीजगणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन के कार्य में प्रकट हुए, जिन्होंने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के तीव्रित होते जाने का उल्लेख किया तथा गणितज्ञ एवं गुप्त लेखविद IJ Good के कार्य में भी, जिन्होंने 1965 में बुद्धिमत्ता विस्फोट का वर्णन किया। एक बार जब यंत्र बेहतर यंत्रों को कार्यकल्पन करने लगेंगे।
1993 कंप्यूटर वैज्ञानिक और विज्ञान कथा लेखक वर्णव विंज ने अपने निबंध द कमिंग टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी में इस आधुनिक अवधारणा को लोकप्रिय किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2007 से 2007 से शिफ्ट का खसुजैन करेंगे, जिसके पश्चात मानव युग समाप्त हो जाएगा, इस अर्थ में कि बिना सहारे के मनुष्य अप्रधान बुद्धिमत्ता नहीं रहेंगे।
जो पंडारा विश्वाहुचुनो भविष्यवेत्ता रे कुर्जेवेल ने अपनी पुस्तक द सिंगुलैरिटी इज नियर के माध्यम से इस विचार को मुख्य धारा के ध्यान में लाया। वे प्रतिपादित करते हैं कि सिंगुलैरिटी सन 2045 के आसपास आएगी, जो संगणन शक्ति में घातीय वृद्धि उनके लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स के अनुसार नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस द्वारा संचालित होगी। वे निरंतर इस समय रेखा पर कायम रहे हैं और हाल ही में AGI 2029 तथा सिंगुलैरिटी लगभग 2045 की पुनर्पुष्टि की है।
समय रेखा संबंधी पूर्वानुमान सन 2026 के प्रारंभ तक।
पिछले कुछ वर्षों में बड़े भाषा मॉडलों, तर्क प्रणालियों और स्केलिंग नियमों में अत्यंत तीव्र प्रगति के कारण पूर्वानुमानों की समय सीमाएं उल्लेखनीय रूप से सिमट गई हैं। सबसे आक्रामक साधनात्कालिक दृष्टिकोण 2026-2027 कुछ प्रमुख AI नेता उदा एंथ्रोपिक के डारियो अमोडेई एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सुपर इंटेलिजेंस अथवा ऐसा कुछ जो कार्यात्मक रूप से प्रौद्योगिक एकत्व के उद्दीपक के समकक्ष हो 2026 जितने शीघ्र या 1-3 वर्षों के भीतर आ सकता है।
विभिन्न विशेषज्ञ सर्वेक्षणों की माध्यिकाएं पूर्ण सुपर इंटेलिजेंस सिंगुलैरिटी के लिए अब भी 2040-2050 के आसपास केंद्रित है।
संभावित परिणामों के धोखे में
यूटोपियाई आशावादी चरम प्रचुरता, रोग और गरीबी का उन्मूलन, मस्तिष्क अपलोडिंग या नैनो चिकित्सा के माध्यम से व्यावहारिक अमरत्व, मानवता का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ विलय, ट्रांस ह्यूमैनिज्म, पहले से असमाध्य वैज्ञानिक समस्याओं का मिनटों में समाधान,
डिस्टोपियन निराशावादी मानवीय अभिकर्तृत्व, नियंत्रण की हानि, असंगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे लक्ष्यों का अनुसरण करती है जो मानवीय मूल्यों से असंबद्ध या उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हों, आर्थिक और सामाजिक पतन तथा यहां तक कि मानवता के लिए अस्तित्वगत जोखिम।
सिंगुलैरिटी केवल अत्यंत उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, ये वो क्षण है जब प्रौद्योगिकीय उत्क्रांति जैविक अथवा मानवीय गति सीमाओं से मुक्त होकर एक स्वायत्त अनियंत्रित प्रक्रिया बन जाती है। चाहे ये 2026, 2030, 2045 में घटित हो या कभी भी न हो,
वर्तमान समय में ये मानव इतिहास के संदर्भ में सबसे दूरगामी परिणामों वाले अनुत्तरित प्रश्नों में से एक बना हुआ है।
अंत का समय 1989।
संजालबद्ध विश्व का प्रारंभ।
विसंलग्न संगणन से संबद्ध संगणन की ओर संक्रमण। टिम बर्नर्स-ली ने 1997 में सर्न में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा। वाणिज्यिक न्यूरल नेटवर्क अनुसंधान, सैन्य तथा शैक्षणिक उपयोग का विस्तार हुआ। इंटेल A0486 का विमोचन हुआ। व्यक्तिगत संगणन शक्ति में उछाल आया। आर्पनेट का रूपांतरण उस दिशा में हुआ जो आगे चलकर आधुनिक इंटरनेट बनी। इससे पूर्व संगणन शक्तिशाली तो था परंतु मुख्यतः अलग थलग खांचों में सीमित था। 1997 के पश्चात संगणन संजाल केंद्रित हो गया। 1997 में न्यूरल नेटवर्क आरंभिक अवस्था में थे, हार्डवेयर सीमित थे और प्रायः नियम संवर्धित प्रतिरूप प्रणालियां थे, परंतु सैन्य और अनुसंधान प्रयोगशालाएं लक्ष्य साधन, मार्गदर्शन और संकेत वर्गीकरण के लिए अधिगम प्रणालियों का परीक्षण पहले ही कर रही थीं। ये आगे आने वाली समस्त प्रगति के लिए आधारभूत परत सिद्ध हुई।
औपचारिकीकृत संदेश 1996।
इंटरनेट का वाणिज्यिक विस्फोट। विब सार्वजनिक और वैश्विक बन जाता है। नेटस्केप और ब्राउजर युद्ध उभरते हैं। अमेज़न और ईबे ये प्रमाणित करते हैं कि ऑनलाइन वाणिज्य व्यवहार्य है। गूगल की स्थापना 1996 में स्टैनफोर्ड में बैकरप के रूप में और विंडोज 95 की व्यापक स्वीकार्यता उपभोक्ता संगणन को त्वरित करती है। 1996 वो वर्ष है जब इंटरनेट अकादमिक क्षेत्र से निकलकर आर्थिक बन जाता है। 1939 से विकसित अवसंरचना अब उपभोक्ता स्तरीय पैमाने पर पहुंच जाती है। .com युग वेबसाइटों के बारे में नहीं है, ये व्यवसाय के डिजिटलीकरण के बारे में है। इस काल ने वाणिज्य, विज्ञापन, सूचना की खोज और संचार के प्रतिरूपों को बदल दिया।
सामर्थ्य प्राप्त संदेश 9 अगस्त 2001।
मोबाइल प्लस प्लेटफॉर्म युग का आरंभ।
मीडिया का डिजिटलीकरण प्लस प्रारंभिक क्लाउड अवसंरचना प्लस सदैव सक्रिय ब्रॉडबैंड। एप्पल ने आईपॉड जारी किया, वहनीय डिजिटल पारितंत्र का आरंभ। विकिपीडिया का शुभारंभ हुआ, सामूहिक ध्यान प्लेटफॉर्म मॉडल। ब्रॉडबैंड का अपनाव तेजी से बढ़ा। अमेज़न ने चुपचाप उस अवसंरचना का निर्माण शुरू किया जो आगे चलकर AWS बनी। नैन 11 के उपरांत निगरानी प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व वेग आता है। डेटा विश्लेषण की अवसंरचना तीव्रता से विकसित होती है। यही क्लाउड कंप्यूटिंग, प्लेटफॉर्म पारितंत्रों, डिजिटल सामग्री के वर्चस्व और सदैव संयोजित अवसंरचना की शुरुआत होती है तथा सोशल मीडिया और स्मार्टफोनों के लिए आधारशिला रखी जाती है।
नींव रखी गई हबकूक की पट्टिकाएं 2012-2013।
गहन अधिगम में क्रे आंतिकारी सफलता।
आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म।
यही वो निर्णायक क्षण था जब न्यूरल नेटवर्क प्रायोगिक अवस्था से निकलकर व्यावहारिक रूप से शक्तिशाली बन गए। 2001 के प्लेटफॉर्म क्लाउड युग और 2023 के जनरेटिव AI विस्फोट के बीच का सटीक सेतु। सितंबर 2012 एलेक्सानेट, एक गहन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भारी अंतर से इमेजिनेट प्रतियोगिता जीतता है, अब तक के सभी एल्गोरिदमों को निर्णायक रूप से परास्त करते हुए। इस एक घटना को AI शोध में सर्वस्वीकृत रूप से उस क्षण के रूप में माना जाता है जब आधुनिक डीप लर्निंग का जन्म हुआ। 2012 जेफरी हिंटन की टीम सिद्ध करती है कि GPU पर प्रशिक्षित गहन न्यूरल नेटवर्क स्वचालित रूप से पदानुक्रमिक विशेषताएं सीख सकते हैं। 2013 गूगल हिंटन की कंपनी DNN रिसर्च का अधिग्रहण करता है। उद्योग जगत अचानक डीप लर्निंग में अरबों डॉलर का निवेश करता है। NVIDIA की GPU उन्नतियां CUDA AI के लिए मानक हार्डवेयर बन जाती हैं। इसके साथ साथ बिग डेटा उपकरण स्पार्क 1.0 2013 में जारी परिपक्व होते हैं, जिससे डीप लर्निंग के लिए आवश्यक विशाल डेटा सेटों का उपयोग संभव हो पाता है।
मुहरों का खोलना 2023।
जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता दहलीज पार करती है।
AI सुलभ, उपयोग योग्य और आर्थिक रूप से विघटनकारी बन जाता है। केवल अधिक बेहतर न्यूरल नेट्स नहीं, ये वो क्षण है जब AI कोड लिखता है
चित्र उत्पन्न करता है, श्वेतपोष कार्य को स्वचालित करता है, तर्क संबंधी कार्यों का विस्तार करता है और पहली बार एआई विशिष्ट बने रहने के बजाय सामान्य उद्देश्यीय संज्ञानात्मक साधन बन जाता है।
2026 Singularity?
1985 को स्वयं अंत के समय की मोहर खुलने के रूप में संजालित संयोजकता का आरंभ, वैश्विक ज्ञान प्रवाह की आधारशिला, सोवियत संघ यूएसएसआर के पतन से संबद्ध, जो एडवेंटवाद के अंतिम अनुग्रह काल के लिए मार्ग चिन्ह है।
1996 को संदेश के औपचारिकीकरण के रूप में व्यावसायिक वेब सूचना अर्थव्यवस्था का विस्तार करता है, वाणिज्य और खोज का डिजिटलीकरण करता है।
True City 1 संदेश का सशक्तिकरण, प्लेटफॉर्म, क्लाउड, सदैव सक्रिय अभिगम, सामूहिक मोबाइल ज्ञान हेतु डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करते हैं।
वेस्ट ऑफ वाइड बुद्धिमत्ता की नींव रखे जाने का काल, गहन अधिगम में हुई क्रांतिकारी प्रगति ने यंत्र अवबोध को व्यावहारिक और विस्तारणीय बना दिया।
मुद्राओं के खुलने के चरमोत्कर्ष के रूप में 2023 जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामान्य उद्देश्यीय संज्ञान में प्रवेश कर जाती है, जिससे ज्ञान सृजन और तर्क विवेचन सुलभ तथा विघटनकारी हो जाते हैं।
ये प्रगति सुरुचिपूर्ण है। प्रत्येक चरण पूर्ववर्ती पर आधारित होकर संचयी रूप से विकसित होता है और क्रम संयोजकता, वाणिज्यीकरण, पारितंत्र, बुद्धिमत्ता, संज्ञान की ओर रूपांतरित होता जाता है।
2012-2013 वह निर्णायक मोड़ है। वह क्षण जब न्यूरल नेटवर्क पदानुक्रमिक स्वचालित अधिगम में सक्षम सिद्ध हुए, AlexNet of ImageNet में विजय, हिंटन के कार्य का प्रमाणित होना, GPU Athalzer स्केलिंग संभव होना, जिसने 2023 के जेनरेटिव विस्फोट को अपरिहार्य बना दिया। 2000 बायो लिग्योलिक्चर पर शेसिन डेटा सेंटर केस एक्सपेरिमेंटेटू केस फॉलो मदलिन ट्रांसफर मदलिंग मॉडलर विनोर मॉडल कलर मोर जेट जीपीटी स्तरीय सामान्यता उत्पन्न कर पाते।